यथार्थ की प्रतिबोधक कहानियाँ। राकेश के कहानी लेखन में सबसे पहला वर्ग उन कहानियों का है जो यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए लिखी गई हैं। उन्होंने जब लिखना प्रारंभ किया तो पहले पहल कुछ ऐसी कहानियाँ लिखीं जिनमें प्रेमचंद की परंपरा को समकालीनता से जोड़कर नए परिदृश्य में लिखा गया है। इसी कारण डॉक्टर धनंजय वर्मा और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाष्णेय जैसे समीक्षकों ने राकेश के प्रारंभिक कहानी लेखन को प्रेमचंदीय कहानी परंपरा का विकास स्वीकार किया है। राकेश की जिन कहानियों में यथार्थ प्रतिबिंबित है वह एक पक्षीय न होकर क्रियात्मक है। उसका एक सिरा सामाजिक संदर्भों से समकालीन परिवेश से, दूसरा सिरा व्यष्टि चिंतना से और तीसरा पारिवारिक विघटन, नगर बोध और देश के विभाजन से उत्पन्न समस्याओं से जुड़ा हुआ है। वास्तविकता यह है कि राकेश के कहानी लेखन यथार्थ का जो समायोजन है वह प्रमुखतः सामाजिक धरातल पर अभिव्यक्त हुआ है। ऐसी कहानियां जो सामाजिक संदर्भों की पीठिका पर यथार्थपरक सामाजिक दृष्टि को उभारती हैं उनका प्रतिपाद्य समय से जुड़ा हुआ है। यह यथार्थ राकेश की गहरी अंतर्दृष्टि, प्रचेता, बुद्धि और सामाजिक दायित्व के निर्वाह की भावना से वलियती है। यही पृष्ठ 66 कारण है कि ऐसी कहानियों में जो अनुभूति का स्तर है वह सीधे परिवेश, समय और समकालीन वातावरण से जुड़ा हुआ है। स्वयं राकेश की धारणा है कि ऐसी कहानियों में वे व्यक्ति, परिवार, परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से समूचे मानव समाज से प्रतिबद्ध है। परिवेश के प्रतिबद्धता उनमें लेखकीय ईमानदारी को व्यक्त करती है। प्रेमचंद ने जहां यथार्थ को उसकी परिणति में आदर्श के रंगों में रंग दिया था वहीं राकेश अपनी कहानियों में उसे यथावत छोड़ देते हैं। जहां कहीं उन्हें आदर्श की आवश्यकता अनुभव हुई है वहीं उनकी कहानी कला में कच्चापन आ गया है। किंतु संतोष का विषय यह है कि प्रारंभिक स्तर की एक दो कहानियों को छोड़कर ऐसी स्थिति नहीं आने पाई है। शुद्ध यथार्थ को अभिव्यंजित करने वाली कहानियों में मंदी, मलबे का मालिक, उसकी रोटी, नए बादल, फटा हुआ जूता, हक हलाल, परमात्मा का कुत्ता और जानवर जैसी कहानियों की गणना की जा सकती है। मंदी एक ऐसी कहानी है जिसमें सीजन समाप्त होने के बाद पहाड़ों की आर्थिक विषमता और विपन्नता को निम्न मध्यवर्गीय लोगों की जिंदगी से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। मलबे का मालिक यद्यपि भारत पाकिस्तान विभाजन की कृत्रिमता और उससे उत्पन्न मानव मूल्यों को निरूपित करने वाली कहानी है किंतु उसमें जो परिदृश्य उभरा है वह यथार्थ से पुष्ट एवं अनुरंजित है। इसमें परिवेश जगत, यथार्थ और जीवन बोध का सीधा दबाव पात्रों पर पड़ता है। इसमें आए पात्र न केवल समकालीन जीवन के दबाव को झेल रहे हैं अपितु उनका वैयक्तिक यथार्थ भी त्रासद और दंशक है। उसकी रोटी भी जिस यथार्थ को अभिव्यक्त करती है वह कृत्रिम नहीं है। यद्यपि इस कहानी का प्रत्यक्ष कैनवस छोटा और साधारण है पर यह जिस परोक्ष की ओर उंगली उठाती है वह न तो छोटा है और न साधारण। इस कहानी के संबंध से डॉक्टर लक्ष्मण दत्त गौतम ने ठीक ही लिखा है कि यह एक ऐसी कहानियों में से है जिसे प्रेमचंद की विकसित परंपरा में रख सकते हैं। यहाँ परंपरा में आस्था के स्वर को मंद नहीं होने दिया गया है। यथार्थ की कड़वाहट में भी संस्कारों की शुद्ध आस्था की मधुरिमा, सांस्कृतिक गरिमा को देश विदेश की निधि के रूप में अपने से जुड़े रहने की भावना है। कमाल यह है कि लेखक बिना भावुक हुए पाठक को विभोर कर देता है। एक, वस्तुतः पाठक और कहानी के बीच लेखक कहीं नहीं आने पाया है और उसकी यही निस्संगता इसे सफल यथार्थवादी कहानी बना देती है। नोट एक, डॉक्टर लक्ष्मण दत्त गौतम, आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य में प्रगति चेतना, पृष्ठ 459। पृष्ठ 67, नए बादल कहानी का प्रारंभ जिस ढंग से होता है और उसकी परिणति जिस बिंदु पर जाकर होती है वह यथार्थ से जुड़ी हुई है। कुछ विशिष्ट अवसरों पर धर्मशाला के चौकीदार आगंतुकों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं तथा कुछ लोगों से पैसे वसूल कर रहने की जगह दे देते हैं, भले ही वे बहुत समय से आए और चिर प्रतीक्षित लोग तकलीफ पाते रहें। प्रस्तुत कहानी में भी यही स्थिति निरूपित है। धर्मशाला के चौकीदार का यह कहना कि पैसे लेकर तो वह ईमानदारी से कह सकता था कि वे लोग औरों से पहले उसके पास आए हैं, इसलिए कमरों पर पहला हक उन्हीं का है। एक, इस कथन से न केवल चौकीदार की मनोवृत्ति स्पष्ट होती है अपितु सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाले अनैतिक और भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। इतना ही नहीं, कहानी के अंतर्गत एक परंपरावादी व्यक्ति के मानसिक उद्वेलन को भी स्पष्ट किया गया है। चौधरी के मन में दो नवागंतुकों और एक नवयुवती के एक ही साथ होने को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। कभी तो चौधरी उनमें भाई बहन का रिश्ता कायम करता है और कभी पति पत्नी के संबंधों की तलाशता है, किंतु नवयुवती का कौमार्य चौधरी को ऐसा विश्वास भी नहीं करने देता। कहने का तात्पर्य यह है कि राकेश ने इस कहानी में जिस यथार्थ को प्रतिरूपित किया है वह एक ओर तो सामाजिकता से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर स्त्री पुरुष के साथ साथ रहने की से उत्पन्न समस्या को परंपरावादिता के माध्यम से उजागर किया गया है। इसके लिए लेखक ने व्यंगात्मक पद्धति का सहारा लिया है। परमात्मा का कुत्ता भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें लेखक ने अन्याय, अत्याचार, शोषण और ऐसे ही अनुमाशिक कृत्यों और तत्वों के प्रति अपनी झुंझलाहट व्यक्त की है। इतना ही नहीं, इस अभिव्यक्ति में लेखक ने अत्यंत साफ जुबान में सरकारी व्यवस्था के खोखलेपन, निष्क्रियता, घुसखोरी और अन्याय से ग्रस्त वातावरण में उपेक्षित मर्दित आदमी का चित्रण व्यंगात्मक शैली में किया है। राकेश ने न्याय पाने के लिए भौंकने वाले सामान्य व्यक्ति के भौंकने को नियति के स्तर पर ही नहीं छोड़ दिया है, उसमें विद्रोह का अर्थ एक और उपलब्धि भी प्राप्त करता है। भौंकने से व्यवस्था की जड़ता टूटती है, कान में तेल डालकर सोए हुए अफसरों की तंद्रा टूट जाती है। इसी कारण परमात्मा का कुत्ता कहता है, चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता, भौंको भौंको सब के सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। दो, नोट, एक, वारिस, नए बादल कहानी, पृष्ठ 57, दो, वारिस, परमात्मा का कुत्ता, पृष्ठ 92। वस्तुतः राकेश की कहानियों में जिस पृष्ठ 68 सामाजिक यथार्थ से संबंधित परिदृश्य को उभारा गया है उसमें व्यंग बोध भी उसके पार्श्व में खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे राकेश झिंझोड़ देने वाले, तिलमिला देने वाले व्यंग से काम लेते हैं। एक, व्यंग बोध की पीठिका पर यथार्थ का चित्रण अधिक सहज, अधिक विश्वस्त और प्रभावी प्रतीत होता है। यथार्थ के निरूपण में राकेश भावुकता का वर्णन करते हुए कहीं भी द्रवित नहीं होते हैं। इसके विपरीत वे तो तीखी भाषा का प्रयोग करके वर्ण संदर्भ को और गहरा बना देते हैं। यही स्थिति जानवर और जानवर कहानी की भी है। इसमें यथार्थ का कड़वा और तीखा स्वर है। कहानी के पात्र अपनी विवशता के कारण पादरी से जुड़े हुए हैं। उनमें आर्थिक अभावों से उत्पन्न पीड़ा गहरे यथार्थ का बोध कराती है। जिस वर्ग के ये पात्र हैं उस वर्ग की समस्त यातना, गाथा और विडंबनाएं पीटर, पाल, आंट सैली और अनीता के माध्यम से व्यक्त हुई हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अपनी विडंबनाओं को सहते हुए भी इन पात्रों में अभी भी कहीं ना कहीं जीवन का स्पंदन है, जिसका स्वर पाल की वाणी में सुना जा सकता है। जिस समय पाल के गिरजाघर न जाने पर पादरी उससे प्रश्न करता हुआ यह कहता है, तुम जानते हो अच्छा भला होकर भी सुबह गिरजे में नहीं आता, उसे यहां रहने का अधिकार नहीं है। दो, उस समय की पाल की मनस्थिति का चित्रण राकेश ने जिस कलम से किया है वह यथार्थ परिदृश्यों के बाह्य रूप को उभारने में ही कुशल नहीं है, अपितु भीतरी संदर्भों को प्रतिरूपित करने में भी पर्याप्त सक्षम प्रतीत होती है। राकेश का यथार्थ चेता कलाकार ऐसे स्थलों पर जिस शैल्पिक संयोजना को अपनाता है वह उनके समकालीन में कहाँ है उसमें अनुभूति की प्रामाणिकता है। राकेश ने जानवर और जानवर कहानी के माध्यम से पहाड़ी स्कूल के विशिष्ट परिस्थिति में जीत, उसे भोगते और झेलते मास्टर और मेट्रनों में जीवनव्यापी विवशता, पराश्रित भावना और आरक्षित स्थितियों की ओर संकेत किया है। फादर फिश का चरित्र काली स्याही से लिखा गया है। अनीता और मणि नानावती को वासना पूर्ति का माध्यम बनाया गया है। अधिकारों की शक्ति का प्रयोग करते हुए पादरी जिस तरह अनाचार, अनीति और भ्रष्ट तरीकों को अपनाता चित्रित किया गया है उससे कहानी का परिवेश और वातावरण यथार्थ की गवाही देने लगता है। इससे यथार्थ को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए व्यंग का सहारा लिया गया है। इससे प्रमाणित होता है कि इस कहानी की रचना प्रक्रिया व्यंग के स्तर पर है। नोट: एक, दूधनाथ सिंह, विवेक के रंग, पृष्ठ 374। दो, मोहन राकेश, वारिस, जानवर और जानवर कहानी, पृष्ठ 167-164। पृष्ठ 69। व्यंग के छींटे इस रचना में जान डाल देते हैं और जानवर के का प्रतीक इसके अंशों को बिखरने नहीं देता है। अंत में गिरजे की घंटियों का डिंग डोंग मिशन के अहाते की सतही नकली और खोखली जिंदगी को मुखरित करता है। एक, हक हलाल राकेश की एक ऐसी कहानी है जिसमें निम्न वर्गीय जीवन में सांस लेती, पैसे के सामने अनेक अत्याचारों को सहती नारी के स्थिति का यथार्थ अंकन हुआ है। कहानी का पात्र पंडित अपनी पंडितानी के भाग जाने पर उसके बदले में, जब तक वह लौट कर न आए तब तक के लिए, उसकी छोटी बहन को ले आता है। उसकी पत्नी लौट भी आती है किंतु फिर भी वह अपनी साली को वापस नहीं भेजता और अपने वासना मूलक अत्याचारों पर पर्दा डालता हुआ यही कहता है, अब वह कहाँ जाएगी जी। पंडित बोला, मैंने आपसे कहा था उसका आदमी बहुत गरीब है, उसके पास इसे खिलाने के लिए एक भी पैसा नहीं है, उसको उसका 100-125 चाहिए सो मैं उसे दे दूंगा। इतने दिनों से घर में रही है सो अब छोड़ने को मन नहीं करता, आदमी को आदमी से मोह हो जाता है और क्या पता कल को बड़ी फिर भाग जाए, ऐसी का भरोसा थोड़े ही है। दो, पंडित का यह कथन जहां साधन संपन्न पुरुष की विलासता, अनैतिकता और भ्रष्ट मनोवृत्ति को रेखांकित करता है, वहीं नारी जाति पर किए गए अमानवीय व्यवहारों को भी स्पष्ट करता है। एक ओर साधन संपन्नता और विलासिता है तो दूसरी ओर नारी की निरीहता, करुणा और विवशता, इन सब से मिलकर कहानी यथार्थ परिदृश्य की उद्घाटिकता प्रतीत होती है। नारी की असहायता पर पुरुष की यह अत्याचार की कथा बहुत पुरानी है किंतु राकेश ने उसे जिस स्तर से उठाया है उस पर आकर यह कहानी खासी यथार्थवादी है। इसका यथार्थ पंडित के यथार्थ से जुड़कर भी परिवेश से कटा हुआ नहीं है। फटा हुआ जूता राकेश की एक ऐसी कहानी है जिसमें आज की पीढ़ी की भटकन और आर्थिक विपन्नता का चित्रण मिस्टर राय के सहारे किया गया है। राय कर्ज के बोझ को ढोता हुआ एक ऐसा इंसान है जिसके मन में व्यवस्था के प्रति विद्रोह है, अपने ढंग से जीने की भावना है किंतु यह सब है मानसिक स्तर पर ही। वह व्यवस्था में घुटता है और कुंठित अनुभव करता है किंतु उससे निकलने का कोई प्रत्यक्ष प्रयत्न नहीं करता है। नोट: एक, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, हिंदी कहानी अपनी जुबानी, पृष्ठ 116। दो, वारिस, हक हलाल, पृष्ठ 153। पृष्ठ 70। यूं उसके मन की स्थिति यह है। राय ने सोचा और सोचकर निश्चय किया कि जीना हो तो उसे ठीक से जीना चाहिए। यह अंग अंग में ऊंघती हुई शिथिलता, यह खाना सोना और बीतना बरसों से खेली हुई ताश की तरह घिसा हुआ जीवन, यह सब बदलना चाहिए। एक, राय की यह जिजीविषा यथार्थ की कटुता से आक्रांत होकर भी बड़ी हुई है। वह जड़ता को बहिष्कृत करना चाहता है, व्यवस्था को तोड़ना चाहता है और एक परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में सांस लेना चाहता है। फलतः उसके मन में बगावत का भाव पैदा होता है। वह सबके प्रति बगावत करना चाहता है, अपने प्रति, कमरे के प्रति, उसकी छत और दीवारों के प्रति, आलमारियों में रखे चीर फाड़ के औजारों के प्रति और मालिक से लेकर गुजराती ढाबे के बैरे तक के प्रति उसके मन में विरोध जन्म लेता है। किंतु इनाम में प्राप्त 30 रुपए के नोटों की आकृतियां उसके बगावत वाले भाव को दबा देती हैं। आर्थिक विपन्नता में पल रहे राय के मन में जूते पहनने की इच्छा जागती है, किंतु बाजार में जाकर हर चीज को देखता है, लेता खरीदता कुछ नहीं। वह टेबल लैंप, नेकटाइयां, जूते, चायदानी, साबुनदानी, घड़ी का फीता, रुमाल, बरसाती, मोजे का जोड़ा, मफलर, बिस्कुट का डब्बा, फाउंटेन और सिगरेट केस जैसी अनेक चीजों के भाव पूछता है, किंतु हर जगह यह दिक्कत आती है कि जहां दाम ठीक थे वहां चीज अच्छी नहीं थी और जहां चीज मनपसंद थी वहां दाम जरूरत से ज्यादा थे। दो, अंत में वह अपनी इच्छावश एक होटल में भी जाता है, किंतु वहां भी बिन खाए पिए एक एंग्लो इंडियन लड़की की सिगरेट पीकर वापस बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि या तो मेन्यू की कीमतों में ही उलझकर रह जाती है या फिर जेनी डिफ्यूजा के शरीर के गोलाइयों पर घूमकर यथावर्त रह जाती है। वह न जूते खरीद पाता है न और कुछ। इस प्रकार राकेश की यह कहानी आर्थिक अभावों की चक्की में पिसते हुए युवक की कहानी बनकर रह गई है। हाँ, इसमें अभावग्रस्त जीवन जीने वाले युवक की मनोभावनाओं, आकांक्षाओं और जिजीविषा को यथार्थ परिप्रेक्ष्य में उभारा गया है। इसका यथार्थ आरोपित और कृत्रिम नहीं है। उसमें सामाजिक जीवन का एक हिस्सा पूरी सच्चाई के साथ उभारा गया है। इस प्रकार राकेश की सामाजिक यथार्थ की प्रतिबोधक कहानियों में समकालीन जीवन के विविध संदर्भ अंकित हुए हैं। अंकन की इस प्रक्रिया में कहीं आर्थिक असमानता, विपन्नता और तजन्नित कुंठाओं के चित्र उभरे हैं तो कहीं इंसानी खाल ओढ़कर जानवरों के व्यवहार में पटु व्यक्तियों पर व्यंग है। नोट, एक, वारिस, फटा हुआ जूता, पृष्ठ 132। दो, वारिस, फटा हुआ जूता, पृष्ठ 139। पृष्ठ 71। कहीं शासन व्यवस्था नौकरशाही के प्रति आक्रोश भरा विद्रोही स्वर है, कहीं नाजायज तरीकों से पैसा ऐंठने पर व्यंग है, तो कहीं साधन संपन्नता के नाम पर विवश नारी की स्थिति का यथार्थ और प्रभावी अंकन है। इस प्रकार राकेश की यथार्थ को निरूपित करने वाली इन कहानियों में परिवार, समाज और राष्ट्र सभी की गतिविधियों व जीवन प्रणाली को प्रभावी शिल्प में बांधकर प्रस्तुत किया गया है। ये कहानियां प्रेमचंदीय परंपरा को समकालीन संदर्भों में विकसित करने वाली कहानियां हैं। यहाँ कहानीकार की यथार्थ दृष्टि प्रगतिशील के सूक्ष्म स्तरों का स्पर्श करती चित्रित की गई है। वस्तुतः यथार्थ का परिदृश्य प्रस्तुत करने वाली ये कहानियां राकेश की उस छटपटाहट को व्यक्त करती हैं जो नया परिवेश और शिल्प पाने के लिए सतत प्रयत्नशील है और अंततोगत्वा एक और जिंदगी जैसी श्रेष्ठ कहानी तक पहुंच ही जाता है। एक, मानव संबंधों को निरूपित करने वाली कहानियां। राकेश की कहानियों का दूसरा वर्ग उन कहानियों का है जिनमें सूक्ष्म मानव संबंधों का निरूपण हुआ है। स्वतंत्रोत्तर काल में भारतीय परिवेश और जनमानस में एक उत्क्रांति आई है। आदर्श और मर्यादाओं के मलबे पर यथार्थ और नए मान मूल्यों को स्थापित किया गया है। जीवन की सपाटता और सिधाई में असंगतियां, विषमताएं और अनेक विडंबनाओं ने अड्डा जमा लिया है। मनुष्य समाज से कटा है और अपने इस कटने, टूटने और बिखरने में वह नितांत अकेला छूटता गया है। अकेलेपन, ऊब, उदासी और पीड़ा के साथ साथ उसने अनेक अंतर्विरोध जन्मे हैं। कस्बाती जीवन की अपेक्षा मनुष्य में नगरबोध पनपा है। परिणाम स्वरूप महानगरीय जीवन की भीड़ में आदमी खोया भले न हो, किंतु लुटपिट अवश्य गया है। जहां परिवेश में इतना बदलाव आया हो, वहां मानव संबंधों में परिवर्तित दृष्टि का विकसित होना स्वाभाविक तो है ही, सहज और अनिवार्य भी है। गांव के उजड़ने और नगरों के आबाद होने से व्यक्ति व्यक्ति के संबंध बदले हैं। पिता के प्रति पुत्र का आक्रोश बढ़ा है, पति पत्नी के संबंधों में तनाव का विकास हुआ है और वह आत्मिक संबंध न केवल शारीरिकता के धरातल पर आया है, वरन वहां भी दोनों एक दूसरे को झेलते जाने या कहूं कि निभाते जाने की सीमा में सिमट कर रह गए हैं। वे तनाव और असमंजस की स्थिति में जी रहे हैं। पहले का वह दाम्पत्य जीवन जो कभी विश्वास के पगों चलता और समर्पण के मैदान में खेलता था, आज वही संदेह और अविश्वास की वैसाखियों के सहारे चल रहा है। नोट एक, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 179, पृष्ठ 72। जहां दिल के अतल में कभी प्यार जगमगाता था, वहीं अब अहम के गुब्बारे में भरी हुई नफरत की हवा डोलती है। परिणामतः मानवीय संबंध मात्र औपचारिकता, विवशता, अभिशप्त जीवन और ऊब व अकेलेपन के पर्याय बनकर रह गए हैं। परिवेश का यह मानचित्र नई कहानी के सशक्त हस्ताक्षर मोहन राकेश की अनेक कहानियों में उभरा है। यूं तो राकेश ने व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों को विशदता से अपनी कहानियों में चित्रित किया है, किंतु उनका ध्यान अधिकतर पति पत्नी के संबंधों तक ही केंद्रित रहा है। नए कहानीकारों ने यदि सबसे अधिक किसी पर लिखा है तो पति पत्नी के टूटते हुए संबंधों पर। आज स्त्री पुरुष के साथ रहना तो चाहती है, लेकिन कौन सा पारिवारिक, सामाजिक और सार्वजनिक स्तर पाकर अभी तक निर्णय नहीं कर पाई है। पुरुष भी नारी की आवश्यकता तो अनुभव करता है, किंतु कितनी और कैसी वह भी निश्चित नहीं कर पाया है। मोहन राकेश ने अनेक ऐसी कहानियां लिखी हैं जिनमें नर नारी के संबंधों को अभिव्यक्ति मिली है। ऐसी कहानियों में सुहागिने, एक और जिंदगी, खाली, अपरिचित, चौगान, फौलाद का आकाश, सेफ्टी पिन, मिस पाल और आखिरी सामान आदि को लिया जा सकता है। मानवीय संबंधों के ह्रास की श्रृंखला में वे ही कहानियां भी आती हैं जिनमें पिता पुत्री के संबंध और भाई बहन के संबंधों का ह्रास भी चित्रित है। वासना की छाया में, रोजगार और मिट्टी के साए आदि इस प्रकार के संबंधों के ह्रास को निरूपित करने वाली कहानियां हैं। इसी क्रम में राकेश ने कुछ ऐसी भी कहानियां लिखी हैं जिनमें मानवीय संबंधों का आधार आर्थिक रहा है। धन दौलत की तराजू में तुलकर मानव संबंधों की जो नियति हुई है, उसे राकेश की बनिया बनाम इश्क, गुनाह बेलज्जत और हक हलाल जैसी कहानियों में देखा जा सकता है। निरंतर ह्रासोन्मुखी होते जाने को निम्नांकित आधारों पर अभिव्यक्ति किया गया है। एक, पति पत्नी के संबंधों में आई तनावमयी स्थितियों व अनमेल रुचियों से। दो, पिता पुत्र, पिता पुत्री और भाई बहन के संबंधों की कटुता से। तीन, आर्थिक आधार पर खड़े मानवीय संबंधों के कच्चेपन से। एक और जिंदगी, नारी पुरुष के वैवाहिक जीवन के संघर्ष से जूझते दंपत्ति की कहानी है। प्रकाश और बीना पति पत्नी रह चुके हैं किंतु तालमेल न बैठ पाने के कारण तलाक के बिंदु पर आ जाते हैं। प्रकाश फिर अपने एक मित्र की बहन निर्मला से विवाह कर लेता है जो अर्ध विक्षिप्तता निकलती है। उससे ऊबकर प्रकाश घूमने पहाड़ पर जाता है जहां उसे अपनी परित्यक्ता और उसका पुत्र पलाश मिलते हैं। यही वह बिंदु है जहां से कहानी प्रारंभ होती है। निर्मला के व्यवहार से टूटा हुआ प्रकाश पहाड़ पर चला तो जाता है किंतु वहां पलाश उसे बांध लेता है। फलतः वह अपने जीवन के अभावग्रस्त होने वाली टीस से एकदम बेचैन हो उठता है। पृष्ठ 73। जीवन का यहाँ एक दूसरा ही रूप उजागर होता है। इससे प्रकाश के जीवन में आई कटुता, ट्रेजिक फीलिंग उसे तोड़ तो देती ही है, कहीं बहुत गहरे मानव संबंधों का एक नया अध्याय भी खोल देती है। दाम्पत्य जीवन के संबंधों की समस्या स्नेहिल संबंधों की भूमिका पर उतर आती है। उधर संवेदना के धरातल मानवीय राग बोध से झंकृत होते हैं। सारे अजनबीपन और दूरी के बावजूद मानवीय व्यवहार कहीं न कहीं मानवीय राग को छू जाता है। इस कहानी में जो पीड़ा विगलित ऊब है और उदासी है, वह मानव संबंधों की पुनर्व्याख्या भी है और एक अवश्य को अकेलेपन व निरर्थकता बोध से आक्रांत भी है। इसमें निरूपित पीड़ा गलत चयन का परिणाम है। वस्तुतः राकेश ने एक युगल के माध्यम से उन सभी की पीड़ा को सांकेतिक किया है जो अपने चयन में भटक गए हैं, अथवा कहें कि जीवन के तथ्यात्मक रूपों से विचल गए हैं। अतः यह कहना उचित ही प्रतीत होता है कि मानवीय अस्तित्व रूप की यह आंतरिक टूटन संस्कार विगलित अस्तित्व का यह कोना प्रत्येक अस्तित्वमय का अपना निजी रूप है और एक और जिंदगी में चलने वाली जीवन की कहानी न केवल प्रकाश की कहानी है बल्कि उन सभी अस्तित्व रूपों की कहानी है जो अपने मूल चयन से भटके हैं। एक स्त्री पुरुष के संबंधों को निरूपित करने वाली यह कहानी अपनी ईमानदारी में अकेली है। इसके प्रकाश और बीना अलग अलग नौकरी करते हैं। उनके जीवन में आने वाला बच्चा भी उन्हें एक सूत्र में बांध नहीं पाता है। बीना समझती थी कि इस तरह जानबूझकर उसे फंसा दिया गया है और प्रकाश सोचता था कि अनजाने में ही उससे एक कसूर हो गया है। दो बच्चे की वर्षगांठ इस दंपति के जीवन की ही गांठ बन जाती है। यही गांठ पुनः पहाड़ी इलाके में खुलने लगती है। लेखक ने बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से इन दोनों के बीते हुए जीवन के तनावों और संवेदनों को रूपायित करते हुए वर्तमान जीवन बिंदु पर उभरने वाले रागात्मक स्तरों की पहचान कराई है। तीन राग संबंधों की तरलता बिछुड़ने के समय स्फुट होते जाने का आभास देने लगती है। इसमें प्रभाव की जो सघनता है वह अलग होने की नियति से बंधी हुई है। सूक्ष्म मानव संबंधों की यह रागात्मक तरलता कहानी में प्रत्यक्षतः इस कथन से टूटती दिखाई गई है, फिजूल की भावुकता में कुछ नहीं रखा है, बच्चे अच्छे तो होते ही रहते हैं, संबंध विच्छेद करके फिर से ब्याह कर लिया जाए तो घर में और बच्चे आ जाएंगे। मन में इतना ही सोच लेना होगा कि इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। इसे स्थल पर किसी भावुकता को मसल कर यथार्थ से काम यों सोचकर भी लिया गया है। कितने इंसान हैं जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी दोराहे से गलत दिशा की तरफ भटक जाती है। क्या यह उचित नहीं कि इंसान उस रास्ते को बदल कर अपने को सही रास्ते पर ले जाए? आखिर आदमी के पास एक ही तो जिंदगी होती है, प्रयोग के लिए भी और जीने के लिए भी। तो क्यों आदमी एक प्रयोग की असफलता को जिंदगी की असफलता मान ले? कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कहानी स्त्री पुरुष के संबंधों की कटुता, जटिलता और उसमें आई अकेलेपन की स्थितियों को प्रतिरूपित करने वाली सशक्त कहानी है। नोट एक डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र, अस्तित्ववाद और द्वितीय समरोत्तर हिंदी साहित्य, पृष्ठ 283। दो मोहन राकेश, वारिस एक और जिंदगी कहानी पृष्ठ 16। 3 डॉक्टर रामदर्श मिश्र आज का हिंदी साहित्य संवेदना और दृष्टि पृष्ठ 1833। पृष्ठ 74 सुहागिनी कहानी भी स्त्री पुरुष के संबंधों को व्यक्त करने वाली कहानी है। इसके पति पत्नी भी पढ़े लिखे हैं, अलग अलग रहकर नौकरी करते हैं। उनमें न कोई मनमुटाव है न एक दूसरे से कोई शिकायत, फिर भी उनके प्यार का नशा उतरता जाता है। जिस सुशील के साथ हनीमून के समय दुनिया बहुत रंगीन लगती थी, अब उसे ऐसा लगता है जैसे वह एक चश्मे से पानी पीने के लिए झुकी हो और उसके होंठ गीली रेत से छू कर रह गए हों। वह चिट्ठी का जवाब लिखती है तो वह भी उसके दफ्तर की चिट्ठियों से अलग नहीं होता। सुशील उससे अपनी बहन के विवाह के लिए अधिकाधिक बचत करने के लिए लिखता है। वह स्वयं को सबसे अकेला तथा अपने जीवन को बहुत नीरस पाती है। उसके जीवन के अभाव नौकरानी काशी की कथा से और अधिक स्पष्ट और बड़े हो जाते हैं। काशी परित्यक्ता स्त्री है और बहुत मुश्किल से अपने 5 बच्चों के साथ रूखा सूखा खाकर रहती है। प्रवासी पति कोई आर्थिक सहायता से कोई आर्थिक सहायता मिलती है न कोई संवेदनापूर्ण खत। उसमें जीने की लालसा अभी मरी नहीं है। पति के आने के दिन वह अपनी मालकिन की प्रसाधन सामग्री से अपना श्रृंगार करती है। पति मारपीट करता है किंतु वह उसकी कामेच्छा भी पूर्ण करती है तथा पुनः गर्भवती हो जाती है। इस सूचना से मनोरमा का हृदय कहीं से छिल जाता है। उसके मन में भी बच्चे की कामना थी लेकिन सुशील अभी बच्चा नहीं चाहता। सुशील का अपने परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए मनोरमा से नौकरी कराना, बचत का आग्रह उसे धीरे धीरे पति से अलग करता जाता है। यह अलगाव एवं ऊब बहुत स्वाभाविक है। नोट 1 राकेश वारिस पृष्ठ 17। अतः सुहागिने कहीं कहानी दाम्पत्य संबंधों की पीठिका पर लिखी गई जटिल संबंधों की कहानी है। इसके नर नारी मानव संबंधों की यंत्रणा को भोगते हुए पात्र हैं। यहाँ संबंधिक जटिलता एक साथ ही 2 स्तरों पर घटित होती है। एक तो यह है कि इसमें चित्रित नारियां पति निपीड़िताएं हैं। एक को यह निपीड़न ग्रंथिग्रस्त कर देता है और दूसरी को भावी आशंका से भर देता है। मनोरमा के मानस के अंतल गहरों में छिपी मातृत्व कामना लावा बनकर फूटती दिखाई देती है। उसे हर पल हर संदर्भ और अकेली स्थिति मातृत्व कामना की अतृप्ति से भरती जाती है। काशी के बच्चों के प्रति उसका अनुराग, उनके प्रति सुखेषणा और उनकी हित चिंतना मातृत्व कामना को ही संकेतित करती है। मनोरमा की ऊब, अकेलापन, खालीपन और नीरस जीवन इसी का कारण है। वह सुशील को पाने, उसके साथ रहने की जो साध लिए जी रही है, वह संतान सुख की चटुल कामना मात्र है। अकेलेपन में कुंती को अपने पास बुलाना, सूखे के टीके लगवाने के लिए 20 रुपए का दान, घर की पुताई की कामना, अगुफा को घर से निकालने का विचार, मैले कपड़ों में सजी कुंती को अपने साथ सटा लेना, परसों की बीमारी की चिंता, उसके गालों को सहलाना, काशी के घी खाने पर उसे मातृत्व का बोध कराना और काशी के खाना कब खाएंगी प्रश्न के उत्तर में अपना प्रश्न कर देना, डॉक्टर ने कहा था कि 10 टीके लगवाने से बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 वह सब के ऊपर बालों की लट के प्रतीक संकेत मनोरमा की उक्त कामना को ही संकेतिक करते हैं। कहानी का अंत भी इसी स्थिति और मनोग्रंथि का प्रतीक मात्र है। विगत प्रेमिल संदर्भों की स्मृति के बीच बीच में आए वाक्य भी इसी मूल भावना के संकेत हैं।